Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Gambhiranandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
यदि ऐसा यदि वो वस्तु होता है, ऐसा पदार्थ होता है, तो फिर वो तो जैसे पानी को हम इसके अंदर कुछ घुसाने के लिए या कोई वस्तु के अंदर कुछ रखने के लिए उसको यूं करते हैं, चावल के अंदर कोई वस्तु घुसाना है उस चावल को इधर करते हैं, इसे इधर करते हैं, फिर उसके अंदर में रखते हैं। ऐसे आकाश के अंदर कोई चीज वस्तु रखना हो, हम इस आकाश ऐसा करेंगे फिर ऐसा रखें, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि वो अभिव्यक्त चीज है, वो ऐसा होता नहीं है। अच्छा, और एक इसमें गजब बात है, आप सोचते रहिएगा, जब इसी विषय में सोच पाएंगे तो आगे जाकर परमात्मा विषय में सोच पाएंगे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। यदि हम फिर अच्छा मैं ऐसा नहीं किया हूं, हाँ ऐसा नहीं किया हूं, ऐसा इधर ऐसे नहीं किया, इधर ऐसे नहीं किया और ऐसा रख दिया, अच्छा इसके इसका मतलब है जब हम यहां में रखा हूं, इस वस्तु का जो मोटापन है, जो आकार है, इतने के अंदर में ये इसको रहने के लिए तो आकाश भी चाहिए, पूरा आकाश ही है, ऐसा बोल देना तो आसान ही है, पूरा आकाश ही है, तो बाहर आकाश अंदर आकाश सभी में आकाश, बाहर में परमात्मा अंदर परमात्मा सभी में परमात्मा, तो फिर जो स्वाध्याय में आने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो इसके अंदर जब हम इसको रख रहे हैं, तो अभी आकाश जो है, आकाश अब इसको रखने के लिए ये वस्तु भी कैसे रहेगा, कैसे इसको भी आकाश चाहिए, और आकाश भी ऐसा एक चीज है कि इसको ऐसा ऐसा करना हटाना भी चीज भी नहीं है। तो इतनी मजेदार की बात है ये कि इसके अंदर में आकाश ऐसे प्रवेश कर लेता है, ऐसा एक वस्तु है वो कि हटता भी नहीं है और सभी का आधार भी बन के बैठा भी है, आधार देता भी है और हटता भी नहीं है। आधार जैसे दूसरे वस्तु को रखने के लिए एक आधार चाहिए, हम एक वस्तु पहले से फेंके और उस वस्तु को हटा करके फिर इस वस्तु को रखते हैं, ऐसा वो वस्तु नहीं है, और रहने के लिए भी आकाश चाहिए भी है। एक एक टाइम में वो क्या करता है, जैसे एक कोटरी बिल्लो, इस कोटरी में चांदी को पिघल के इसके अंदर में डाल दो। अब चांदी को रहने के लिए आकाश जरूरत था, लेकिन चांदी रह गया तो आकाश बाहर आ गया। यदि एक चीज पैक हुआ तो अंदर का चीज बाहर आ गया, ऐसा भी नहीं है, रहता भी है। हाँ, चांदी को आश्रय भी देता है और वो भी स्वयं भी रहता भी है, जाता भी नहीं है। अच्छा, ऐसे बोलने से फिर जो है तार्किक ज्ञान से ये लगता है कि दैट इज एम्प्टी स्पेस, ऐसा लगता है, फिर एक खाली था इसलिए ऐसा रह गया, और खाली भी वस्तु नहीं है, आकाश एक भाव पदार्थ है, आकाश एक भाव पदार्थ है, उसकी भी अपनी की सत्ता है, लेकिन वो ऐसी की सत्ता है जैसे परमात्मा की सत्ता सर्वत्र है, हमको महसूस नहीं होता है, इतनी सूक्ष्म रूप में आकाश भी ऐसी, आकाश की भी ऐसी की सत्ता है, वो इतनी सूक्ष्म रूप में वो व्याप्त है, और सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जाने से, जैसे मैंने कल एक उदाहरण दे रहा था, जैसे पृथ्वी का एक ये जो क्या कौन सा हाँ फिनाइल का गोली जैसे, अब वो टुकड़ा ऐसे था, अब जब धीरे 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 व्याप्त हो गया गंध के रूप में, पूरा घर में व्याप्त हो गया, और उसकी सत्ता ही नहीं है, अब सत्ता नहीं बोल रहे हैं लेकिन सारे घर में व्याप्त है। ये तो पृथ्वी की तत्व से, पृथ्वी तत्व से बना हुआ एक गोली की बात कर रहा हूं मैं, बाकी आप जल के विषय में सोचिएगा, जल कैसे स्थूल रूप होता है, फिर सूक्ष्म रूप कैसे होता है, फिर कारण रूप कैसे होता है, और बोध जल आप ही है। साधना की प्रक्रिया में पंचभूत प्रक्रिया जो है, अब पंचदश में पंचभूत प्रक्रिया आता है, वो प्रक्रिया पढ़ते समय इस पृथ्वी विषय में आप अध्ययन कीजिएगा, और वो पृथ्वी तत्व आप स्वयं में हो करके, जैसे गंध जैसे आपके कमरा में जैसे व्याप्त हो गया, ऐसा छोटा सा गोली होकर के ऐसा टुकड़ा था और पूरा कमरा में पूरा व्याप्त हो गया, ऐसे आपका ये शरीर जो है ये ऐसा शरीर दिखाई दे रहा है, और ये जब सूक्ष्म रूप लेता है टुकड़ा टुकड़ा होकर, ये भी जब पूरा एकदम हो जाता है, इसी प्रकार एक उपासना कीजिए आप, तब जाकर पृथ्वी तत्व का आप जय करेंगे, फिर जल तत्व को जय करने के लिए फिर उसी में फिर आप कंसंट्रेशन कीजिएगा, तत्व को समझिएगा फिर कंसंट्रेशन कीजिएगा, जल हम एक पात्र में जल भर देते हैं और जो चूल्हा जला देते हैं और थोड़ी समय जब छोड़ देते हैं पूरा कोई जल पानी रहता ही नहीं, और क्या बोलते हैं, जल गया, खत्म हो गया, जल गया। क्या जलता है? पूरा आकाश मंडल में एक भाप के रूप में पूरा व्यापक हो जाता है। इन तत्वों से बना हुआ ये पांच तत्व से बना हुआ ये शरीर है। अब ये ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसा करते करते आप इस शरीर का जो अध्यास है ये अध्यास को मिटाना पड़ेगा। ऐसे टूटता नहीं है ये। एक एक तत्व को लेना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, धीरे धीरे तोड़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ थोड़ी सी छोटा मोटा कुछ और जो है त्राटक फाटक आदि थोड़ा कुछ करना पड़ेगा मन को बहलाने के लिए। आप लोगों के पास टाइम नहीं है इसे उखाड़ने के लिए, शरीर का अध्यास को उखाड़ने के लिए टाइम नहीं है। अब जब आप करने के लिए कहां बैठ जाओगे, जब मन जब लगेगा ही नहीं शरीर में जाएगा, परेशान हो जाओगे, तब तो मालूम पड़ेगा क्या क्या करना चाहिए। तो ये जो कहना है कि ये जो आकाश तत्व जो है इसमें एक ही साथ हम चांदी भर देने पर भी एक ही समय में रहता भी है और स्थान देता भी है और जाता भी नहीं है। इसी प्रकार जो परमात्मा भी जो है ये सर्वत्र उसी प्रकार व्याप्त है, आधार भी है, अंदर में रहता भी है। कल एक और एक विषय आया था, चलो उसे उठाए बाद में, यहाँ के थोड़े पाठ आगे लगा लेंगे। तो तथा च ब्राह्मी पुराणे यानी ब्रह्म पुराण में धर्माधर्म जन्म मृत्यु सुख दुखी सुकल्पना मरणाश्रमास तथा वास स्वर्ग नरक एवच धर्माधर्म जन्म मृत्यु सुख दुखों में जो कल्पना है, सुख दुख की जो कल्पना है और वर्णाश्रम है, वर्ण और आश्रम है और स्वर्ग नरक में जो वास है ये सब जो है पुरुषस्य आगे पुरुषस्य न संति एते परमार्थस्य कुत्रचित, यानी वो पारमार्थिक पुरुष में ये कुछ भी नहीं रहते हैं, ये कहीं पर भी नहीं रहते हैं। ऐसा करिएगा और वो पुरुष के पारमार्थिक अवस्था में ये सब कुछ रहते ही नहीं है। हाँ, और व्यवहार में ये सब रहते हैं और पुरुष के पारमार्थिक अवस्था में। हाँ, मैं जो आपको ये जो दे रहा था, ये जो उदाहरण दे रहा था, मैं आपको ये दिखा रहा था एट द सेम टाइम एट ए टाइम एक समय में ये यानी स्थान वो क्या कहना था जो सगुण भी है और निर्गुण भी है, अर्थात तो वो जो है उसके जो पारमार्थिक तत्व में ये कुछ भी नहीं रहता है। अब पारमार्थिक तत्व जो दिखा रहा हूं, पारमार्थिक तत्व और फिर जो व्यवहारिक तत्व है, तो पारमार्थिक तत्व से व्यवहारिक तत्व में आने के व्यवहारिक अवस्था में आने से वो सगुण होते हैं ये बात नहीं है। जिस समय में निर्गुण है वो परमात्मा, उस समय सगुण भी है, यही परेशान है। जैसे महात्मा का हम देख रहे हैं, कोई ये आत्मज्ञानी है देख रहे हैं, वो जब बात कर रहे हैं, जो भी क्रिया हो रही है, हाँ, यदि शरीर का अभिमान नहीं करेंगे तो बात किसे कर रहे हैं? तो शरीर आप बोलेंगे कि ये बात कर रहे हैं इसलिए जब फिर ये अज्ञानी है, अज्ञानी अपने को मानेंगे तभी बात होगी, ठीक है? तो लेकिन वो बात नहीं है। यदि जिस समय बात कर रहे हैं उस समय में ही वो निर्गुण में भी अवस्थान है, ये इसमें गाड़ी फंसती है। लेकिन हमको क्या लग रहा है, निर्गुण तो परमात्मा है ही है, लेकिन वो सगुण बन करके करते हैं, जैसे लग रहा है कि उस निर्गुण अवस्था से फिर आकर के फिर सगुण बनकर कार्य करते हैं, वो बात नहीं है। निर्गुण में रहते हुए सगुण का कार्य हो रहा है, ऐसा है, इसलिए जो है समझना मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए भ्रम में पड़ जाते हैं। तो हमको लग रहा है कि अभी यदि वो यदि कार्य कर रहे हैं तो फिर ये अभी उसे अपने अवस्था में नहीं है। और ये जो है योगियों की जो अवस्था होती है, समाधि अवस्था होती है, वहां माना जा रहा है। लेकिन वेदांत जो चिंतन से आत्मज्ञान से जो जो समाधि स्वरूप हो जाता है, समाधि एक अवस्था होती है और समाधि एक स्वरूप होता है, स्वरूप होता है और वह समाधि अवस्था को प्राप्त करता है। तो उत्थित अवस्था में योगियों का उत्थित अवस्था में फिर जब वो व्यवहार होता है फिर जो नीचे आ जाता है, लेकिन ज्ञानियों का ऐसा नहीं है। जिसमें वो समाधि स्वरूप है उसमें फिर व्यवहार भी होता है, बड़ी मुश्किल है समझना। हाँ, निर्गुण स्वरूप में करते नहीं है, निर्गुण स्वरूप में होते हुए हाँ एक सगुण कार्य होता है। जैसे ये आकाश जिसे दिखा रहा हूं, ये बाहर नहीं जा रहा है, वो स्वयं भी है और देता भी है, और ये नहीं कि बाहर आ गया और स्थान दिया, ऐसा नहीं है। वो आकाश के विषय में भी ऐसी है। अच्छा, इसलिए समझना मुश्किल पड़ जाता है। दृश्यते दृश्यते च जगद रूपम असत्यम सत्यवन मृषा तोयवन मृग तृष्णा तु यथा मरुमरीचिका। जैसे यथा, नीचे से चलिएगा, यथा मरुमरीचिका, मरु यानी जो रेती का स्थान होता है, मरु है, मरीचिका मरुमरीचिका विषय में मरुमरीचिका बोलते समय मृग तृष्णा ही समझ में आ जाता है, लेकिन मरुमरीचिका का अर्थ आप समझिएगा। मरु जो है का अर्थ जो है जो रेती स्थल है, जहां रेती भरा हुआ है जिस स्थान पे, और मरीचिका जो है प्रकाश से उत्पन्न जो किरण है, प्रकाश से प्रकाश का जो किरण है, जैसे सूर्य की किरण है, सूर्य प्रकाश है उसका किरण है, उसको कहते हैं मरीचि, मरुमरीचि, ठीक है। अब उससे उत्पन्न जो भी मरु यानी रेती का स्थान और जो सूर्य का किरण को मरीचि कहते हैं, इन दोनों के संबंध से एक जल जैसे एक उत्पन्न हो जाता है, इसलिए वो उसको मरुमरीचि का कहते हैं। लेकिन हमारे कुछ पुराने में कोई ऐसी कुछ घटना घटी है, कोई मरुस्थल में कोई एक हिरण कोई मृग जो है ऐसे कुछ गया और जो सामने उसको जल दिखाई दिया और जहां पहुंचा जल पीने के लिए वहां जल मिला ही नहीं, इसी प्रकार इसकी तृष्णा उसकी बढ़ती गई और आखिर में वह मर गया, इसीलिए इसका नाम जो मरुमरीचिका का नाम जो है मृग तृष्णा नाम पड़ गया, ठीक। तो मरुमरीचिका रूप जो मृग तृष्णा है, ठीक, उसमें जो जल है तोयवन जल के समान है। अब वो जल के समान जिसे प्रतीत होता है, दृश्यते ऊपर में जो दृश्यते है तोयवन दृश्यते यानी जिसे प्रतीत होता है, उसी प्रकार जगद रूपम असत्यम, ये जगद रूप जो असत्य होते हुए सत्यवत निशा सत्य के समान, इसमें जो सत्यवत यानी सत्य वाला अर्थ नहीं करना है, सत्य के समान, इव अर्थ में वति प्रत्यय होता है यानी सत्य के समान जो है, और मृषा मृषा यानी व्यर्थ है, व्यर्थ जो है ये जगत जो है सचमुच असत्य है, होते हुए व्यर्थ से एक सत्य की जैसे दिखाई दे रहा है, बिना मतलब से जैसे सत्य की जैसे दिखाई दे रहा है। जब देखो समस्या आ जाता है, अब व्यर्थ कहां दिखाई दे रहा है, कितने खा रहे हैं पी रहे हैं मजा ले रहे हैं सब, कितने देखो सुंदर कितना भवन बना रहे हैं, कितने आनंद ले रहे हैं, ये जगत ऐसा यदि नहीं बनेगा, आप बोलेंगे कि स्वामी जी क्यों आश्रम बना रहे हो, अब ऐसा नहीं बना तो अब हम किस आनंद में कैसे बैठते, कैसे ऐसी क्यों लगा है, आनंद में बैठने के लिए तो है। जैसे पहले मैंने पहुंचा वो भिवंडी में उस जंगल के अंदर में, चार बांस गाड़ा और ऊपर में एक ताड़पत्री प्लास्टिक एक डाला मैंने और उसमें ही सोया मैंने, दीप भी नहीं जलाता था। तो कुछ जो है चार पांच भक्त जो थोड़ा सा जिज्ञासु आए, कुछ स्वामी जी वहां हैं तो फिर जाकर कुछ देखेंगे पूछेंगे, तो पढ़ने के लिए आए। अब मैंने कहां बिठाऊं, जहां सांप आ रहा है बिच्छू आ रहा है उसमें बिठाया। अब ऐसे होते बारिश भी आ गई, अब बारिश आ गई तो यहां बैठे और ऊपर से पानी जो है और प्लास्टिक में बैठे नीचे पानी गया तो उनके सामने वो समस्या खड़ी हो गई। अभी एक साल जो पूरा बारिश जो है इसी प्रकार निकाला मैंने, अब कौन बैठ कर पढ़ेगा वहां, तो चाहिए ना वो, फिर जब बनना फिर शुरू हुआ। अब ऐसे जो है ऐसे जगत को जो इतने सारे प्रतीत हो रहा है, फिर सुंदर बनाओ बढ़िया से बनाओ ऐसा करो वैसा करो, इतना सुंदर जगत मृषा व्यर्थ ही सत्य प्रतीत हो रहा है। अब व्यर्थ कैसे सत्य प्रतीत हो रहा है, आराम कितने बढ़िया लग रहा है। कहा कि सत्यवन हाँ असत्य होते प्रतीत हो रहा है। ठीक है आगे, रौप्यवत कीक संभूतम कीक संसुक्ति रेवच सर्पवत रजु खंडश्च निशायाम वेशम मध्यगह वेश्म मध्यगह। देखो ये जो की कसम जो लिखा हुआ है, हाँ की कसम अर्थ जो है हड्डी है, की कसम अर्थ हड्डी, हाँ ठीक नहीं समझे हड्डी। अब जो है आपके वो हिंदी उधर देखोगे ना परेशान हो जाओगे, तो जो है ये जो हड्डी भूत की कसम ये हड्डी ही सुक्ति रे बच, ऐसा तो शाब्दिक अर्थ है। हाँ ये जो समुद्र में एक कीड़ा एक छोटा सा प्राणी जो है वो जीता है, उसके अंदर में ऊपर का जो हड्डी है खोखला जो ऊपर उसका आवरण है। परमात्मा भी बहुत गजब गजब प्राणियां उत्पन्न किए, किसी ऊपर से आटा गया तो उसका ऊपर का ऐसे आवरण बना दिए जैसे ये हमारे खोपड़ी का जितनी कड़क हड्डी होता है, हड्डी बहुत प्रकार हड्डी होते हैं। हाँ तो फिर ऐसे उसके ऊपर में वो एक हड्डी ही समझिएगा, और जब मर जाता है तो फिर ऊपर का वो हड्डी उसका हड्डी बोलते हैं, इसीलिए उसको किकस कहा। तो हड्डी भूत किकस भूत जो किकस है, हाँ? जो खपड़ी है उसका ऊपर का वो क्या कहा सुक्ति रे वो सुक्ति ही है। ठीक है हाँ? तो हाँ? और क्या है हाँ? वो मर जाता है तो उसके ऊपर में जो ये चमड़ा है वो चमड़ा थोड़ा सूख जाने के बाद थोड़ा उसके ऊपर किरण जब गिरता है ना चमकते चमकते थोड़ा सा सफेद सफेद दिखाई देता है। हाँ ऐसी है और क्या है, वो बहुत सारे प्राणी ऐसे हैं। हाँ क्या हाँ 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 शंख भी एक प्राणी है। ये कन्याकुमारी में जाकर के वो कैसे कैसे ला कर रख देख, मैं कुछ दिन रहा कन्याकुमारी में देखा तो बड़ा अच्छा भी लगा और कैसे एक अब क्या है? तो वो सुक्ति है। ठीक अच्छा वो सुक्ति ही है, और जो है वो सुक्ति क्या होता है रौप्यवत चांदी के समान मालूम पड़ता है। ठीक की कसम भूतम की कसम सुक्ति रेव किकस भूत यानी हड्डी भूत जो हड्डी है यानी जो खपड़ी के समान जो हड्डी है वो सुक्ति है, लेकिन वो रौप्य के समान चांदी के समान जो प्रतीत होता है। जैसे हाँ जैसे जैसे सर्पवद रजु खंडश्च निशायाम वेश्म मध्यगह यानी वेश्म घर घर में पड़ा हुआ एक रजु खंड एक रसी टुकड़ा वो निशायाम यानी रात्रि में अंधकार में ठीक अंधकार में सर्प के समान ही प्रतीत होता है। जैसे आप समझ रहे क्या ऊपर में जो है वो सारे पुरुष का तो पारमार्थिक में कुछ नहीं है दिखाया, और जो दिखाई दे रहा है ये सारे कैसे मिथ्या है अब यहां से सब एक एक बताते बताते जा रहे हैं। हाँ ठीक हाँ एक एक एव एक एव इंदुर दो व्यम्नी तिमिराहत चक्षुषः आकाशस्य घनीभाव नीलत्वं स्निग्धता तथा। जैसे जो है ये एक चंद्रमा हाँ एक जन इंदु इंदु चंद्रमा है एक ही चंद्रमा दो यानी दो रूप में जैसे प्रतीत होता है कहाँ आकाश में किसको जिनका चक्षुष हाँ जिनका चक्षु तिमिर रोग से आहत है तिमिर रोग से आहत एक तिमिर रोग होता है हाँ जिसकी आंख जो तिमिर रोग से आहत है हाँ आहत होता है यानी उससे युक्त होता है तो आकाश में एक चंद्रमा उसको दो चंद्रमा जैसे दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार जो है आकाश से घनी भाव नीलत्वम स्निग्धता अब आकाश की जो ये जो घनी भाव नीलत्वम घनी भाव हाँ घन नील आकाश में और स्निग्धता ये जो गीलापन है हाँ जैसे आकाश में वो गुण नहीं है लेकिन दिखाई देता है उसी प्रकार जो है ये जगत मिथ्या होते हुए भी ये सत्य सा जान पड़ता है। ठीक सारे चीज घटाइएगा आप सोचिएगा
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तिदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।